समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज पब्लिक स्पीक में जो विषय हम लेकर आए हैं वो जिंदगी के काफी नजदीक है, संवेदनशील भी है और विषय है सबके लिए घर के सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना। हर कोई ये चाहता है कि रहने के लिए उसका अपना पक्का मकान हो। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं या उनके अपने मकान नहीं हैं, और सरकार ने इस समस्या को पहचाना और इसके लिए बहुत समय पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कर दी गई और इसमें आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है और कुछ योग्यताओं की पूर्ति करनी पड़ती है लाभार्थी के लिए। अगर आप उन योग्यताओं की पूर्ति करते हैं तो बड़ी आसानी से इस योजना में इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या ये प्रक्रिया, कैसे इसमें आप लाभ उठा सकते हैं और इसके क्या क्या प्रावधान हैं, हम विस्तार से आज इस कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में कोई भी समस्या, कोई जानकारी, कोई सवाल आपके पास है तो हमसे अवश्य बात करें, हमसे अपने सवाल पूछें, सलाह और जानकारी भी आप ले सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद जी तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण जी। कार्यक्रम में आप दोनों विशेषज्ञ मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
और अब सुनने वालों को के लिए हमारी फोन कॉल्स खुल चुकी हैं, तो हमें कोई भी जानकारी या समस्या समाधान के लिए आप फोन करें, इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 2331447171 06 और 2342105 0। दिल्ली के श्रोता इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड अवश्य लगाएं 011। और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9289094044928909404। दिस इज अ बायलिंगुअल प्रोग्राम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। तो अब हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। जब तक मेरे पास फोन कॉल आते हैं, पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि एक्चुअली पीएम आवास योजना है क्या, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें। गया प्रसाद जी,
बहुत जैसा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को आवास प्रदान करना जिनके पास अपना पक्का आवास नहीं है। जो जिनके पास पक्का आवास है वे इस योजना के पात्र नहीं है, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उन्हें घर, पक्का घर दिलाया जाना। लेकिन पक्का घर किन लोगों को दिलाया जाएगा, इसके कुछ अंतर हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग हैं। मैं ग्रामीण के लिए अगर कहूं तो हम लोगों ने जो घर दिलाने के लिए जो मान्यताएं निर्धारित की है उनमें कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि अगर किसी कोई सरकारी सेवा में है तो वो पात्र नहीं है। पहला तो यही है कि किसी के पास, जिसके पास भी पक्का घर है वह इस योजना का पात्र नहीं है। जिनके पास पक्का घर नहीं है वही इस योजना में पात्र हैं। लेकिन कौन पात्र होंगे, किस प्रकार से होंगे, जो सरकारी सेवा में हैं, जिनकी आय 10,000 रुपए से ज्यादा है, जिनके पास किसी प्रकार भूमि ज्यादा है, 2.5 एकड़, 5 एकड़ और 7 एकड़, सिंचित असिंचित इस तरह से, तो ये जो लोगों को चिन्हित करने के जो मानदंड बनाए गए हैं उन मानदंडों को जो परिवार फुलफिल करते हैं, जो उसको संतुष्ट करते हैं, वो जो है इसके पात्र हैं। इसी प्रकार से ये भी निर्धारित किया गया है कि किन्हें एकदम घर मिलेगा।
अच्छा,
जैसे कोई परिवार है जो बधुआ मजदूर है, उसके पास अपने पास रहने के लिए घर नहीं है, उसका नाम निश्चित रूप से सूची में किया जाएगा। जो भूमिहीन परिवार हैं उनको घर दिया जाएगा। जो एकदम आवासहीन है, जिनके पास घर ही नहीं है, उन्हें वरीयता पे घर दिया जाएगा। और खासकर इस योजना में ग्रामीण की बताऊं कि प्रारंभ से ही इसमें उन गरीब परिवारों को जरूर समाहित किया गया है, जैसे जनजातीय परिवार है, जो आदिम जनजातीय परिवार हैं, या दूसरे परिवार हैं उनको वरीयता में जरूर घर दिया जाएगा। ये योजना की प्रारंभ से
ही है, व्यापक है इसका। और मैं अभी मेरा मन में दूसरा सवाल है, लेकिन पहले हम शहरी की भी बात कर लेते हैं। शहरी जो ग्रामीण आवास, शहरी आवास योजना जो है, उसका क्या प्रमुख बातें हैं उसमें?
जी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मानदंड यही है कि जो परिवार है उसका पक्का मकान ना तो शहर में ना किसी गांव में, पूरे भारतवर्ष में अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और थोड़ा सा ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से ये अलग है कि ग्रामीण में धनराशि जो है, जो मदद है सरकार की तरफ से, वो परिवार को दी जाती है और परिवार अपना घर बनाता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 और वर्टिकल है, जैसे कि कोई नगर निकाय या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग बनाती है उनमें लोगों को अलॉट होता है, कोई आदमी अपना खुद भी घर बनाता है उसमें सरकार अपनी मदद देती है, और तीसरा यदि आप कोई लोन ले रहे हैं और आप इस योजना के लिए पात्र परिवार हैं तो उस लोन पर आपको ब्याज जो लगता है उसमें छूट मिलती है।
अच्छा
जी,
ठीक है। गया प्रसाद जी, जो आपने ये कहा कि दूर दराज के इलाकों के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, तो आप ये कैसे चिन्हित करते हैं कि लाभार्थी वाकई में सच में कौन है?
ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये बड़ा लाजमी सवाल भी है कि क्या हम योजना में कौन लोग हैं जिनको कि हम चिन्हित करते हैं, किस प्रकार से उनका नाम जो है वो तैयार किया जाता है। क्योंकि जब ये योजना 2016 में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू की गई, उस समय पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके पहले एक भारत देश में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी 2011, जिसमें पूरे देश में सर्वे करके यह चिन्हित किया गया था कि कौन से परिवार हैं जिनके, बहुत से उसके पैरामीटर्स थे जिन पर चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन उसमें एक पैरामीटर था कि कितने परिवार हैं। जैसे मैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, उस समय लगभग 17 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवार थे जो गांवों में रह रहे थे, उसमें से ये चिन्हित किया गया कितने लोग हैं जो जो जिनके पास कच्चा घर है। कच्चा घर मतलब या तो घर ही नहीं है।
तो इसकी पूरी एक सूची बनाई गई,
पूरी सूची बनाई गई, और सारा सत्यापन करने के बाद उस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर ये चिन्हित किया गया कि कौन, कितने परिवार हैं इसमें से जिनके पास घर ही नहीं है, या घर है कच्चा तो एक रूम का है, या दो रूम का है, या दो रूम से ज्यादा का है।
गया प्रसाद जी, इस बीच हमारे एक श्रोता फोन पर इंतजार कर रहे हैं, पहले हम उनसे बात कर लें। धर्मवीर है दिल्ली से। हेलो।
हेलो, नमस्कार जी।
हाँ नमस्कार, बताइए।
हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
नमस्कार जी।
जैसे कि मैं दिल्ली शहर से धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ, हमारा जो अपना घर है हमारे दादाजी के द्वारा बनाया गया है, हमारे नाम से नहीं है, और मैंने एक प्लॉट ले रखा है संत नगर में। अगर वो प्लॉट को मैं बनवाना चाहूँ, क्या गवर्नमेंट मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मानेगी कि नहीं मानेगी? और दूसरा एक जनरल क्वेश्चन ये है कि दिव्यांग लोगों के लिए क्या इसमें क्या सहूलियत है?
ठीक है ठीक है, कुछ और छूट अगर दी गई है तो जरूर।
और तीसरा सवाल एक छोटा सा ये है,
हाँ पूछिए,
कितनी आय होनी चाहिए? आपने अभी बताया 3 लाख।
हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए कोई छूट इसमें अगर प्रावधान है तो।
धर्मवीर जी, हमारी जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाती है कि अगर एक से ज्यादा आवेदन है, और सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि कोई दिव्यांगजन का, कोई विधवा महिला है उनका, इस प्रकार के जो आवेदन है उनको हमेशा ही प्राथमिकता दी जाती है।
दूसरा प्रश्न आय की इन्होंने।
जी बिल्कुल, देखिए आय की बात ऐसी है कि जो परिवार है उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या कहीं दूर दराज के किसी शहर में रहते हों। और तीसरी बात आपने बोली,
इन्होंने कहा कि इनका एक दादाजी का घर है लेकिन इन्होंने जो प्लॉट लिया है उसमें वो इससे मकान बना सकते।
जी बिल्कुल धर्मवीर जी, इसमें सबसे पहली सोचने की बात यही है कि क्या आप जिस घर में रहते हैं उसके आप मालिक हैं, वारिस हैं कि नहीं। हो सकता है आपके दादाजी का मकान हो और आपके पिताजी कई भाई हों, तो ऐसी दशा में परिवार की संख्या बढ़ जाती है और आप अपना घर बनाने के लिए हकदार होते हैं। लेकिन यदि घर बड़ा है और उसमें आप सभी परिवारजन आराम से रहते हैं तो आप एक तरीके से उसके फिर हकदार नहीं रह जाएंगे। यहाँ पे जो परिवार का हम मतलब समझते हैं इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में परिवार का अर्थ है पति पत्नी और ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप अपने दादाजी के घर से मत सोचिए केवल, क्योंकि दादाजी के बाद पिताजी, उनके भाई, ये सब होते हैं। मान लीजिए अब आप उस घर में आराम से रहते हैं तब तो आपको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपका परिवार अलग हो गया है, आपने शादी कर ली है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अलग परिवार मानते हुए।
एक सवाल मेरे मन में आया
जी,
आपने कहा कि जैसे कोई वयस्क बच्चा, मान लीजिए कोई परिवार का बच्चा है, उसके पिता के नाम पर या दादा के नाम पर घर है लेकिन वो यहां से कहीं और चला जाता है, मान लीजिए कहीं दूर दराज उड़ीसा चला गया या कहीं किसी और राज्य में उसकी नौकरी लग गई, वो वहां चला गया, तो क्या वो अपने नाम पर वहां इस सुविधा का लाभ उठा सकता है?
देखिए बिल्कुल, इसको इस तरीके से देखिए कि पहली कंडीशन यही है कि आपका कोई घर यहां पर नहीं हो, अपने कहीं भी, न इस शहर में न दूसरे शहर में न कहीं गांव में होना चाहिए। पर परिवार, अगर बच्चा दूसरी जगह जाके नौकरी करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, वो कुछ कमाता नहीं है, एडल्ट अर्निंग नहीं है, तो वो इसी परिवार का हिस्सा माना जाता है। अगर लेकिन वो एडल्ट है और कमाता है तो उसे अलग परिवार माना जाता है,
वो इस योजना का
लाभ ले सकता है।
हमारे श्रोता उड़ीसा से हैं, पद्म लोचन हमारे साथ। हेलो।
हेलो,
हाँ जी बोलिए अपना सवाल।
मैं उड़ीसा से पद्मलोचन महांती कोराई से बोल रहा हूँ।
जी स्वागत है आपका
सर। आपका जो विशेषज्ञ, आपको मैं बधाई देता हूँ, एक अच्छा सा प्रोग्राम आपने किया जो गरीब लोग उसके फायदा ले गए। लेकिन सर मैं यही बात बताऊँ, जो करप्शन होता है कैसे बंद किया जा सकता है?
अच्छा ठीक है, ये चाह रहे हैं कि इस योजना की पारदर्शिता को कैसे बनाए रखें।
मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है ये, पर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बताऊं कि पहली बात यह है कि जो भी उसको पैसा दिया जाता है, चाहे जैसे उड़ीसा में मैं कहूं तो उड़ीसा में 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है और पैसा लाभार्थी के सीधे खाते में दिया जाता है। ये योजना के प्रारंभ से है, मतलब 2016 से ही पैसा जो दिया जाता है वो राज्यांश और केंद्रांश दोनों को मिलाकर के जो 1,20,000 रूपये है ये उसके खाते में दी जाती है। दूसरी जो और बाकी पारदर्शिता है, जिसे कोई कहे कि आपका नाम सूची में है कि नहीं है, तो इसके लिए हमारी जो दिशा निर्देश है उसमें स्पष्ट उल्लेख है और उड़ीसा में खासकर गवर्नमेंट बिल्डिंग में, पंचायत भवन पे, इन सब जगहों पे जो गांव में पात्र लोगों की सूची है वो पूरी तरह से पब्लिकली लिखी हुई है कि किसको घर पहले मिलेगा, किसको घर बाद में मिलेगा, और उस सूची में जो मेरिट लिस्ट के अनुसार है उसमें कोई आगे पीछे नाम नहीं कर सकता। ये एक है। और हम लोग, ये तो है और दूसरी चीज, बाकी ये तो है कि जहां सूची अवेलेबल है, दूसरी और चीजें हैं जो हम लोग समय समय पर, जो चाहे घर किसको स्वीकृत किया गया उसको हम लोग सीधे SMS से भी बताते हैं कि आपका घर स्वीकृत हो गया है, अब आपको पहली किस्त दी जाएगी, पैसे जो देते हैं। तो इसमें जो बिचौलियों का जो रोल है,
भूमिका नहीं है,
वो उसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं इसमें किसी का नाम जुड़वा दूंगा या इसमें से नाम ये कर दूंगा, यह संभव नहीं है।
गया प्रसाद जी, सारे पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए आपको राज्य सरकार का समन्वय मिलता है?
जी एकदम मिलता है, क्योंकि ये योजना जो शहरी और ग्रामीण दोनों है, इसका क्रियान्वयन जो है वो राज्यों के माध्यम से ही किया जाता है।
अच्छा।
जितनी योजना है इसका, यहाँ पे हम पैसा राज्यों को देते हैं, राज्य जो है वो पैसा लाभार्थियों को देती है, और वो लेकिन हम लोगों के पास भारत सरकार पर इस योजना के प्रारंभ से ही हमारे पास एक MIS सिस्टम है जिसका नाम अगर पीएमएवाई रूरल के लिए कहूं तो उसका आवास साफ्ट है और इस एमआईएस पर सारी सूचनाएं, लाभार्थियों के नाम, लाभार्थियों का बैंक अकाउंट, लाभार्थियों का आधार नंबर, लाभार्थियों के मोबाइल नंबर, उसकी पंचायतवार स्थिति, उसकी क्या मेरिट है, ये सारी चीजें, और उस कितनों को घर मिल चुका है, वो घर उसको पहली किस्त कब मिली, ये सारे विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। कोई भी कहीं से इस चीजों को देख सकता है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहता हूं कि सारी चीजें बड़ी स्पष्ट और पारदर्शी रूप से हैं। इसमें किसी बिचौलियों के लिए या किसी स्तर पर कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है।
जी, हमारे अगले श्रोता है महाराष्ट्र में थाने से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी बोलिए।
जी मैम नमस्कार।
नमस्कार
जी। सर को भी नमस्कार।
नमस्कार गुरुनाथ जी।
जी सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम चला रखी है तो कई कई मतलब राज्यों में भी ये स्कीम चलती रहती है, तो क्या ये मतलब कोई भी लाभार्थी है वो इसकी मतलब ले सकता है, ये पूछना था। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे मतलब ये राशि दी जाती है किसी व्यक्ति को घर बनाने के लिए, तो ये इसका बाद में इंस्पेक्शन किया जाता है कि कई बार देखा जाता है कि राशि मिलने के बाद कुछ आदमी कुछ लोग मतलब थोड़ा सा बना के ऐसे रखते हैं और बाकी के जो राशि है वो कहीं और खर्च पे किया जाता है। और
एक चीज ये बताएंगे कि
शहरी
कहाँ से बोल रहे हैं,
थाने से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इन्होंने जो बात पूछी वो शहरी के हिसाब से।
आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं?
फोन करके आए।
हाँ,
ये शहरी के ही पूछ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूछा कि एक केंद्र सरकार योजना चलाती है और राज्य के माध्यम से।
नहीं, संभव है ये दोनों हो सकते हैं।
जैसे मैं बताऊं महाराष्ट्र के केस में, महाराष्ट्र में ग्रामीण के लिए उनकी चार जो है वो हाउसिंग स्कीम्स हैं।
अच्छा।
बसई आवास योजना और इस तरह की उनकी जनजातियों के लिए और बाकी के लिए इस प्रकार से। लेकिन जो लोग मैं कहूं कि जिन्हें अब स्टेट के हाउसिंग स्कीम में लाभ मिल चुका है, इसका मतलब उनके पास पक्का घर बन चुका है। अगर उन्होंने पक्का घर उनका किसी भी अन्य योजना से बन गया है तो वो इस योजना के पात्र नहीं है।
ये बात ध्यान
ये ध्यान देने वाली बात ये है।
ठीक है,
दोनों में ग्रामीण
हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और हम चर्चा कर रहे हैं सबके लिए घर के सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण जी। आप भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हमें सीधे फोन कीजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044 और एक नंबर है लैंडलाइन में बता दूं 2331444। इस बीच मथुरा से हमारे श्रोता है सुरेंद्र सिंह सिसोदिया जी। सुरेंद्र सिंह जी बोलिए।
सर नमस्कार जी।
नमस्कार, बताइए सवाल पूछिए।
मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी, जिला मथुरा उत्तर प्रदेश से।
बोलिए।
मैंने 5 साल पहले शहरी विकास आवास प्रधानमंत्री के लिए फॉर्म भरा था, मैंने आवेदन किया था, तो मैं जानना चाहता हूँ सर जी, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया।
अच्छा
सुरेंद्र जी, आपको इस बात की सूचना वैसे नगर पालिका से मिल जानी चाहिए थी कि आपका
मथुरा।
हाँ, मथुरा से बोल रहे।
हाँ जी, मथुरा से मैंने फॉर्म भरा था, 1.5 लाख रुपए जमा हुआ था मेरा उस समय।
1.5 लाख रुपए
आपने पैसे जमा किए थे, तो आपको घर अलॉट होने थे या आपको राशि मिलनी थी?
घर अलॉट होने के लिए क्या था, आगरा से मुझे उन्हें कहा था कि आगरा से मिलेगा आपको आवास।
अच्छा, शहरी।
तो मुझे लगता है सुरेंद्र जी आपका फोन नंबर हमारे पास है, आप मोबाइल से बोल रहे हैं।
आप मोबाइल से बात कर रहे हैं।
हाँ, हम आपसे संपर्क करके आपसे अन्य जानकारी लेना चाहेंगे और उसके बाद आपकी जो समस्या है उसका निदान करेंगे।
ठीक है सुरेंद्र
जी। हाँ, चली गई।
अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया?
देखिए, जो जैसे अभी प्रसाद जी ने बताया ग्रामीण के मामले में तो जो SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उससे परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनी और आवास प्लस से नाम लिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी जो आवेदक एक शहर में इच्छुक हैं अपना घर पाने के लिए, चाहे बनाने के लिए या खरीदने के लिए, उन लोगों ने उनकी डिमांड जनरेशन हुआ था जो संबंधित नगर पालिका ने किया था 2017-18 के आसपास, 2017-18 के आसपास। तो ऐसे में काफी सारे इच्छुक लोग सामने आए और उनका एक डिमांड रजिस्ट्रेशन भी किया गया। तो किसी शहर में कौन आदमी अपना बनाना चाहता है, कौन खरीदना चाहता है, इसके बेसिस पे डिमांड सर्वे कंप्यूटराइज हम लोगों की वेबसाइट पे भी एप्लीकेशन लिए गए। तो तरह तरह से आवेदन एकत्र हुए हैं, लोग करते हैं और अक्सर ये सारे आवेदन एकत्र होकर के जानकारी नगर निगम से मिलती है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या आती है तो निश्चित तौर पे हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल हमारा जो विभाग का हेल्पलाइन नंबर है, हमारी वेबसाइट है, वहां पर जा करके कोई शिकायत हो उसको दर्ज करा सकते हैं। और अगर नगर निगम से कोई बात नहीं बनती है तो हमारा जो विभाग का mohua.gov.in हमारी वेबसाइट है, वहां पे फोन नंबर या वेबसाइट के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
mohua.gov.in ओके, ये है mohua.gov.in। इस साइट पर जाकर के इसमें शिकायत का ऑप्शन होगा कहीं पर, तो इसमें आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। अगले श्रोता हमारे साथ हैं बिहार में दरभंगा से मोहन पासवान। मोहन जी स्वागत है आपका, बोलिए।
धन्यवाद मैडम, प्रणाम करके।
हाँ नमस्कार, बोलिए।
सर क्या नई आवास योजना में वर्षा जल संग्रह के लिए कोई जगह बना गया है क्या सर? सर दूसरा है कि ब्लॉक में सर घर लेने वाले किसान मजदूरों को काफी चक्कर काटना पड़ता है, बिचौलियों से बचने तथा घूस से बचने के लिए क्या प्रावधान रखा गया सर?
बहुत सही सवाल आप मोहन जी कर रहे हैं। एक तो आपने जो पहला किया है कि क्या कोई जल भराव या
वर्षा जल
से लिए, आपने मैं बताऊं कि आपके इस सवाल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि अर्बन में, रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम केवल पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता ही नहीं देते हैं। योजना के प्रारंभ से ही जो शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, गैस कनेक्शन है, दूसरा जो है उसके साथ दूसरा आजकल जो है हम लोग इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाना, दूसरा टॉयलेट शौचालय घर का बहुत अभिन्न अंग है, बिना शौचालय के रूरल में कोई भी घर पूर्ण नहीं माना जाता। तो ये शौचालय 12,000 रुपया जो हम लोग चाहे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से या मनरेगा के पैसे से या पंचायत के किसी अन्य स्रोत से, तो ये शौचालय देने के साथ साथ ये मतलब जिसको कहते हैं कन्वर्जेंस जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की एक आधारभूत कड़ी है। घर देने के साथ साथ हम उन्हें जो जिसको कहते हैं कि सुविधाएं शहर की और घर जो है वो गांव में, तो ऐसा जो है वो हम लोगों का है। दूसरा एक सवाल जो आपका और था
वो पारदर्शिता पर,
पारदर्शिता पर मैं आपके माध्यम से बताऊं कि किसी भी तरह के बिचौलिए से कोई रोल नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देने का। जब भी सर्वे होता है उसके लिए बाकायदा जो है वो जो पंचायत के ब्लॉक के आपके पदाधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम रोजगार अधिकारी हों, चाहे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं या पंचायत सचिव हैं, यही लोग जाकर के गांव से पात्र लोगों का नाम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो उसे आवास साफ जो हमारा MIS सिस्टम है उस पर अपलोड करते हैं। और यदि आप उनकी इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो सबसे पहला जो कड़ी है वो आप अपनी जो है वो ब्लॉक लेवल पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे अभी शहरी के लिए बताया कुलदीप सर ने, उसी तरह से हमारी जो आवास योजना अर्बन रूरल की है वो है pmayg.nic.in, इस पर भी आप आ करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी, लेकिन अभी आज के समय में बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में कोई सर्वे का काम नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो भारत सरकार की योजना है उसके लिए जो भी सर्वे जब भी ऐसा होगा जो नया अभी घोषणा हुई है उसके लिए जब कोई पात्रता की सर्वे की जाएगी तो उस पर सबको जो है वो सूचित किया जाएगा।
जी, इस बीच बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बहुत दूर से हमारे श्रोता झारखंड से मुनव्वर आलम। मुनव्वर जी पूछिए अपना सवाल।
मेरा सवाल ये है कि हम दो भाइयों के नाम से जमीन है और एक किस्सा खाली है, एक किस्सा में तो हम लोग घर बनाए हैं, क्या हमको आवास का फायदा मिल पाएगा?
लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहरी इलाके में
है? ये शहरी इलाके में है, लोहरदगा झारखंड से बोल रहे हैं।
अच्छा, लोहरदगा।
मुनव्वर जी पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में जो शुरू हुई थी, आज के दिन में जितने घर सैंक्शन किए जा चुके हैं, स्वीकृत किए जा रहे हैं, उनको पूर्ण किया जा रहा है। और जल्द ही हम लोग, अभी आपने पढ़ा भी होगा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 करोड़ घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और अगले 5 साल में बनाए जाएंगे, तो उसमें लगभग 2 करोड़ ग्रामीण में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। अभी उसकी कोई नई स्वीकृति नहीं हुई है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि जो इसका एक्सटेंशन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, वो उसमें क्या नियम होंगे, कैसे लोगों का चयन होगा, इसकी कुछ प्रक्रियागत चीजों पर निर्णय हो रहे हैं, उसके बाद आपको नगर पालिका से निश्चित तौर पे इस प्रकार की सूचनाएं मिलेंगी, तब आप इसमें आवेदन करेंगे।
एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप में आया है, व्हाट इज द वेटिंग पीरियड टू गेट इंस्टॉलमेंट आफ्टर अप्लाइंग अंडर PMAY?
देखिये ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण दोनों के बिहाफ पे कहना चाहूंगा। अभी जैसे प्रसाद जी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है और बिचौलियों की जगह नहीं है। हम लोग अक्सर ये पाते हैं कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जब वेबसाइट पे, पंचायत में, सूचना पट पे लगाया जाता है तो भी कई बार कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है और कभी भी ऐसा लगे तो सबसे सही चीज जो प्रसाद जी ने बोली कि शिकायत करें।
हाँ।
जानकारी देने का मकसद ही यही है कि लोग शिकायत करें। और दूसरा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है इंस्टॉलमेंट मिलने का। अगर आपकी योजना स्वीकृत हुई है तो आपको पहली किस्त मिलती है, आप अपना काम करते हैं उसके हिसाब से अगली किस्त मिलती है, काम पूरा हो जाता है तो आखिरी किस्त।
जी, महाराष्ट्र से नासिक से हमारे श्रोता है प्रेम सिंह शेखावत, सवाल के लिए रुके हुए हैं। प्रेम सिंह जी पूछिए अपना सवाल।
मेरा ये सवाल था कि जो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने ग्राम विकास, ये मतलब आवास सबके लिए, उसके अंदर 2.5 लाख रुपए तक की छूट दी थी जो आवास बनाना चाहता उसके लिए लोन वोन पे।
जी बिल्कुल।
तो उसमें अभी मैं बैंक में गया था तो बैंक वालों ने ये बोला कि वो जो है खत्म हो गया, अभी 2.5 लाख रूपये छूट जो है वहाँ से बंद हो गई, सरकार ने बंद कर दी। तो ये है या नहीं है ये कन्फर्म करना था,
मेरे
को मकान लेना था।
जी प्रेम जी, आपको जिस बैंक ने बताया वो सही सूचना दी। जो आप होम लोन लेते हैं, अगर आप उसके लाभार्थी हैं, आय के हिसाब से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अगर होते हैं, लोन लेने पर जो इंटरेस्ट में छूट मिलती थी वो 31 मार्च 2022 तक थी, अभी नहीं है। और जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एक्सटेंशन होने वाला है उसकी नियमावली जब आ जाएगी तब आप, नए नियम होंगे उनके हिसाब से आवेदन कर सकते हैं।
मैं ग्रामीण के बारे में थोड़ा सा आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी कि इसके लिए जो हमारे दूर दराज गांव में रहने वाले लोग हैं वो कौन से दस्तावेज दें जिससे वो इसमें सूची में शामिल हो सकते हैं?
देखिए ये बड़ा अच्छा, एक तो जब सर्वे होता है उसमें सबसे बड़ा दस्तावेज यही है कि उसके पास पक्का घर है तो वो पात्र नहीं है। और उसके बाद उस समय जब हम सर्वे करते हैं तो हम आधार नंबर लेते हैं, बैंक अकाउंट नंबर कलेक्ट करते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके परिवार का पूरा विवरण लेते हैं और उसके सारी जितनी परिवार में कौन लोग हैं, क्या उनकी इनकम है, ये सब लेते हैं। बाकी उस समय हम लोग कोई दस्तावेज नहीं लेते, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के अलावा कोई जमीन का कोई कागज हम लोग सर्वे के समय नहीं लेते कि आपके नाम से है। हाँ, ये जरूर फोटो जरूर खींचते हैं कि जो जहां पे आपका पुराना कच्चा घर है उसकी फोटो लेते हैं और जहां आप नया पक्का घर बनाएंगे उसकी फोटो लेते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो
अब समय
के सही सत्यापन
समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ली जाए। तो हमारे उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद जी आपका, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अब चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।